आज के पावन संध्या के समय में हमारे बीच राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंघल भाई जी उपस्थित हैं। ब्रह्मा बाप समान बेफिक्र बादशाह स्थिति कैसे बनाए उसके बारे में भ्राताश्री हमें विस्तार रूप से अनुभव भी कराएंगे। हम सभी ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत करेंगे और मैं भाई जी का संक्षिप्त रूप से आपके सामने परिचय पेश करना चाहूंगी कि ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय है, यहाँ दुनिया के गिने चुने अमूल्य रत्न समाविष्ट होकर मानव कल्याण के लिए भगवान के साथ हाथ बटोर रहे हैं। इसमें से एक अनोखा रत्न है भ्राता मोहन सिंघल जी। आप 1963 में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक पद प्राप्त करके आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे ONGC में और 96 में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और संपूर्ण रीति से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर लिया। आप 1985 में जो इंटरनेशनल यूथ ईयर के दौरान पदयात्राएं चली उसका सुचारू रूप से संचालन भी किए हैं और वर्तमान समय ईश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर ज्ञान सरोवर परिसर के अकादमी के कोऑर्डिनेटर के रूप में आप सेवारत हैं और साथ साथ 1988 से साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने अब तक करीब 7 एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए हैं। आपको एनवायरमेंट के क्षेत्र में परिसर के क्षेत्र में जो आपने सेवाएं दी उसको श्लाघते हुए तब के एचआरडी मिनिस्टर श्री अर्जुन सिंह ने आपको पर्यावरण श्री अवार्ड भी दिए हैं। साथ साथ आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में। वर्ल्ड पीस अवार्ड भी मिला है। 2004 में भी आपको अवार्ड मिला है। आप इन अवार्डों से सम्मानित हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारी संस्था में कार्य करते हुए आप पर्यावरण के ऊपर बहुत आस्था भी रखते हैं और आपद प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी आपका बहुत सुंदर लेक्चर्स चलते हैं। अब तक आप करीब 1000 से भी ज्यादा लेक्चर्स आपने दिए हैं जिससे लाखों लोगों का कल्याण हुआ है। L&T, ONGC, NPTC, IPCL, क्रिपको, रिलायंस, वीडियोकॉन और अनेक मेडिकल कॉलेजेस में भी आपने अपना स्पीचेस लेक्चर्स सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं और केवल भारत में ही नहीं कई विदेशों में US में UK में बांग्लादेश में आप मानव कल्याण के लिए जाते रहते हैं और अपने अनुभवपूर्ण वक्तव्य से लोगों को भी लाभान्वित करते रहते हैं और आप इंडस्ट्रियल पीस चिल्ड्रन अपलिफ्टमेंट यूथ डेवलपमेंट के ऊपर भी चित्र प्रदर्शनी भी निर्माण किए हैं और आपने अब तक 5 पुस्तक बुक्स भी पब्लिश किए हैं लिखे भी और पब्लिश किए हैं। ऐसे अनेक रूप से संपन्न बाप दादा के नूरे रतन आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंघल भाई जी आज हमारे सामने अपने अनुभव के साथ बेफिक्र बादशाह स्थिति जो ब्रह्मा बाप समान हमें बनाना है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है।
ओम शांति। हम सभी का रोल मॉडल जो है ब्रह्मा बाबा है। हम सभी चाहते हैं बाप समान स्थिति को प्राप्त करना क्योंकि अभी तक एक ये ही आत्मा है ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को जिन्होंने प्राप्त किया है और सूक्ष्म वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम सबके सामने ये उदाहरण है कि इतने कम समय में कितने वर्षों में केवल लगभग 33 वर्ष से भी कम समय में 1936 में ये ज्ञान शुरू हुआ और 1969 जनवरी में तो बाबा कर्मातीत अवस्था फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करके अव्यक्त हो गए। तो इतने कम समय में 33 वर्ष के अंदर ही बाबा ने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया, जबकि इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार और सब चीज बाबा के सिर पर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। साथ ही यज्ञ चलता रहा, बढ़ता रहा और अभी हम सब इसी बात के राही हैं, पुरुषार्थी हैं कि हम सब भी कैसे बाबा समान बेफिकर बादशाह की निश्चिंत स्थिति को प्राप्त करके संपूर्ण बने। आज का विषय ही ये है कि ब्रह्मा बाप समान बेफिकर बादशाह की निश्चिंत स्थिति कैसे बाबा ने बनाई। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि बाबा के साथ रहने का 1961 के अंत में ज्ञान में आए और 1969 तक कई बार बाबा के साथ साथ रहने का सौभाग्य मिला। साथ ही सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये मिला कि जब बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया था, बाबा ने 17 और 18 जनवरी 1969 उस समय हम मधुबन में ही थे, आ गए थे और उन अंतिम दो दिनों में बाबा के साथ रहे, बाबा की संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति का बहुत निकट से अवलोकन करने का सौभाग्य मिला और इसी कारण से वो दृश्य हमारी आंखों के सामने सदैव घूमते रहते और उनसे ही कैसे हम भी सब मिलकर के लाभ उठाकर कैसे हम उस स्थिति को प्राप्त करें, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है संपूर्ण कर्मातीत बनना, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना। तो निश्चिंत स्थिति जो है, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी सारा यज्ञ का कारोबार और सब, तभी भी बाबा की स्थिति कैसे निश्चिंत रहती थी। लौकिक में आप सभी को अनुभव है, कोई भी परिस्थिति आती है, संकल्प चलते हैं क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा आदि आदि, और वो ही चिंता का कारण बन जाते हैं। इतना बड़ा यज्ञ हम सब ने सुना है, बाबा 1936 में, पहले तो बाबा हीरे जवाहरात के व्यापारी दादा लेखराज के नाम से जाने जाते थे और फिर बाबा ने जब दिव्य साक्षात्कार किए और बाबा ने जब ये साक्षात्कार किया, विनाश का भी साक्षात्कार किया, शिव बाबा का दिव्य अवतरण उसका भी साक्षात्कार किया, साथ ही साथ बाबा ने ये भी साक्षात्कार किया कि ऊपर आकाश में सितारे सितारे हैं और वो धरती पर आते हैं, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाती है, आप सबने भी जीवन कहानी में ये पढ़ा होगा, और उसको देख करके और तभी बाबा के कानों में आवाज सुनाई पड़ा, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बस वो दुनिया इतनी मनोरम थी, बाबा देखते ही रह गए, राजकुमार राजकुमारियां रास विलास कर रहे हैं, खेल कूद है, नई सतयुगी दुनिया है, सोने चांदी के महल हैं, सतो प्रधान प्रकृति है, हर चीज जैसे अपनी सबसे उच्चतम अवस्था में है, और बाबा उसी को तल्लीन होकर दृश्य को देख ही रहे थे और तभी बाबा के कान में आवाज आई कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। बाबा ध्यान से नीचे उतरे और बस बाबा का ये चिंतन चलने लगा, कौन था, किसकी आवाज थी, कौन कह रहा था तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, मैं कैसे ये दुनिया बनाऊंगा, मुझे तो मालूम नहीं। तो उस समय जैसे वो स्थिति थी जो बाबा के मन के अंदर कई प्रश्न, कैसे बनाऊंगा ये दुनिया। कोई भी कार्य अगर हमारी स्थिति से बाहर का प्रतीत होता है कभी, तो चिंतन चलना स्वाभाविक है, वो भी ज्ञान की शुरुआत ही थी। लेकिन धीरे 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 सब स्पष्ट होता चला गया और बाबा की स्थिति भी धीरे निश्चिंत होने लगी। लेकिन उसमें भी एक मोड़ तभी आया जब अपनी गुलजार दादी जी, तब तो बहुत कम उम्र की थी, और उस समय दादी जी जब ध्यान में जाती थी, गई एक बार तो ऊपर देखा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा को, बस देखती रह गई वो। नीचे जब आई तब उन्होंने मम्मा को बताया, आप सबने पढ़ा होगा ये सब, कि वहाँ तो बाबा हमारे साथ जो यहाँ हैं, ऐसे ही बाबा मैंने वहाँ सूक्ष्म वतन में देखे। तो बाबा को भी इसका राज नहीं मालूम था, मम्मा को भी नहीं मालूम था। तो बाबा ने कहा ठीक है, अगली बार जब तुम जाओ तो फिर उनसे ही पूछना आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है। तो अगली बार जब गुलजार दादी जी, तब तो उनकी आयु ही 9-10 वर्ष की थी, और उस समय जब फिर गए तो वहां जाके उन्होंने उनसे पूछा आप कौन हैं, तब सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा ने खुद ही अपना परिचय दिया कि मैं उस ब्रह्मा का संपूर्ण रूप, और जो ब्रह्मा बाबा आपके साथ रहते हैं उनका संपूर्ण रूप। तो वो नीचे आई और बाबा को बताया, तो बाबा ने कहा अच्छा, उन्होंने बताया कि बिल्कुल आपके जैसा रंग रूप सब कुछ था, तो बताया क्या फर्क क्या था, बिल्कुल ऐसे कि नहीं बाबा शक्ल सूरत ऐसी ही थी आप जैसी, लेकिन उनमें बहुत प्रकाश था, बहुत तेज था, और लेकिन शक्ल सूरत यही थी। बस तब से बाबा को ये धुन लग गई, मुझे ऐसा, ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है, मुझे इस स्वरूप को पाना है, इतना तेजोमय बनना है। और वो बाबा के जीवन पुरुषार्थ की और रफ्तार तेज हो गई। तो निश्चिंत, तो एक जब एंड टारगेट होता है, अंतिम स्वरूप, तो ऐसे ही अगर हम सब भी उस स्थिति को पाना चाहते हैं, तो जो हमारा अंतिम स्वरूप है, बाप दादा ने बताया हुआ है कि आप सब भी यहाँ पर कर्मातीत अवस्था को, हर एक की अपनी अवस्था है, हर एक को संपूर्ण अवस्था को पाना है, और अपनी उस अवस्था को हम सर्वदा एमर्ज करके रखें बुद्धि में कि मैं ऐसा संगम युग के अंत में अव्यक्त फरिश्ता कर्मातीत बनूंगी या बनूंगा, और फिर सतयुग में जाके तो हम सबको डबल ताजधारी बनना ही है। तो निश्चिंत स्थिति जो हमारी बात पक्की है और कि हमें ऐसा बनना ही है, भले जीवन में थोड़े अप्स डाउन्स आते हैं, पेपर्स आते हैं, लेकिन चूंकि अंतिम रिजल्ट हमारी बुद्धि में अगर सदा रहेगी, तो जो भी पेपर होंगे वो हमें हलचल में नहीं लाएंगे, क्योंकि हमें अंतिम रिजल्ट मालूम है। मानो हमारा बैंक में बैलेंस है, पैसा है, और कोई ऐसा खर्चे का कोई प्रसंग आता है, तो बहुत चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रसंग आया है हमें मालूम है इतना, उससे ज्यादा पैसा है, निकाल करके हम उस प्रसंग को सफल बना लेंगे। कोई शादी का प्रसंग हो, कोई भी लौकिक अलौकिक कोई प्रसंग हो, इसी तरीके से अगर जब हमें मालूम है और बुद्धि में ये सदा रहे कि मैंने इस कर्मातीत अवस्था को, फरिश्ते स्वरूप स्थिति को अनेक बार प्राप्त किया है, तो फिर कभी भी कब, क्यों, क्या, कैसे, बस उस चिंता की स्थिति में नहीं आएंगे। इसीलिए एक तो हम अपनी फाइनल स्थिति को सदा अपनी बुद्धि में एमर्ज करके रखें, और इसी स्थिति का ही ना निश्चिंत स्थिति होती है, उसी का गीता में भी वर्णन है, योगियों के लिए भी कहा है, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, हानि लाभ, दुख सुख, सब में हमारी मानसिक स्थिति समान रहे। जब व्यक्ति को अगर अनुकूल परिस्थिति होती है, उसमें बहुत खुश हो गया, और प्रतिकूल विपरीत परिस्थिति में अगर अशांत दुखी हो गया, तो ये तो साधारण मनुष्य भी हो जाते हैं। तो बाबा अभी हम बच्चों से चाहता है, दुनिया में भी इस परिस्थिति को ना, इस बात को दो लाइनों में किसी ने, गीतकार ने बड़ा अच्छे रीति से वर्णन किया है, हम सबको भी बाबा कहता है, आप सब चैतन्य फूल हो, और ये चैतन्य फूल हैं, इसी बात को लेकर किसी ने दो लाइन में बोला है कि फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है। बाबा ने भी कहा है, आपका हमारा जीवन शुरुआत कमल के फूल से होता है, कमल समान पवित्र रहते हैं, वो हमारे ब्राह्मण जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन अंतिम स्थिति का वर्णन किस फूल से है, गुलाब के फूल से। क्यों? क्योंकि गुलाब का फूल होता है, पंखुड़ियां होती हैं, बस सब बाजू बाजू सबका कनेक्शन बीच में जो है पेडल उसके साथ होता है, आपस में कनेक्शन नहीं होता है, भले साथ साथ रहते हैं, जुड़े हुए नहीं, और थोड़ा सा भी फूल को जरा सा थोड़ा सा झटका दो, पंखुड़ियां झड़ जाएंगी। तो इसी तरीके से अंत में जब हमारी स्थिति होगी, रहेंगे दुनिया में, परिवार में, सबके साथ, लेकिन हम सबका कनेक्शन पूरा रीति से शिव बाबा के साथ होगा, और बस ऊपर से बुलावा आया, आओ बच्चे, जो बाबा का चित्र भी है ना, हमेशा इस रूप में देखते हैं, तो हम सब भी संपूर्ण बन के चले जाएंगे। वो गुलाब का फूल हमारा अंतिम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था का सूचक है। इसीलिए सब कार्य व्यवहार करते भी किसी के साथ कोई भी प्रकार का ऐसा अटैचमेंट या ये न हो, सब बुद्धि योग का कनेक्शन बीच में बाबा के साथ ही है। तो इसी बात को ही जो मैं बता रहा था, किसी गीतकार ने कहा है कि फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्कराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है। जीवन में जीतने पर तो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन देखने में हमें लगे अरे ये प्रतिकूल हुआ, ये हमारी हार जैसी दिखे, लेकिन वो हार हमें विचलित ना करे, वो हार हमें प्रभु के गले का हार बना दे। तो ये निश्चिंत स्थिति जितनी जितनी हमारी होती जाएगी, उतना उसका स्वरूप यही होगा कि चाहे जीवन में अनेक प्रसंग आएंगे, ऊंच नीच आएंगे, लेकिन हमारी स्थिति जो है ऐसी रहेगी, न अति में बहुत जीत में खुश हो गए, न हार में दुखी हुए, बस मान अपमान, निंदा स्तुति, एक तो इस रीति से। और बाबा का यही देखते थे, इतना बड़ा यज्ञ, बैगरी पार्ट भी चला, बाबा ने इतने बड़े यज्ञ में इतने 300-400 भाई बहनों को बिल्कुल राजकुमार राजकुमारियों की तरह पाला, सब कुछ दिया, और एक तरफ एग्री पार्ट, लेकिन बाबा की मानसिक स्थिति ऐसी थी, कभी भी विचलित नहीं दिखते थे बाबा। मैंने तो 7-8 वर्ष के बाबा के सानिध्य में देखा, ऐसे ऐसी भी परिस्थितियां आती थी, कोई भी हेड ऑफ द फैमिली कुछ विचलित हो सकता है, लेकिन बाबा देख करके अच्छा अजुन अभी ये है, किसी भी बच्चे की कोई स्थिति देखते थे, बस बाबा कहते थे ड्रामा, लेकिन ये समय भी बदल जाएगा, चला जाएगा, और साथ ही और क्या, तो एक तो हम ये अपने को चेक करते चले, ये निश्चिंत स्थिति का प्रतीक है। साथ ही साथ कोई भी परिस्थिति, बाबा की इतनी आयु थी और कई बार बाबा को खांसी काफी आती थी, मैंने देखा, ओल्ड एज थी, सर्दी का मौसम माउंट आबू, और कई बार खांसी से आंखें भी जैसे नम जैसी हो जाया करती थी। हम लोगों को देखकर लगता था कि अरे बाबा को बहुत तकलीफ हो रही है जैसे, लेकिन बाबा की स्वस्थिति इतनी मजबूत थी कि ये बाहरी परिस्थिति को भी ना जैसे क्षण भर में ही बदल देती थी। ये खांसी आई, तकलीफ हुआ, बस दूसरे ही क्षण देखते थे हम लोग बाबा के संदली के पास ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था, लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का, और बाबा कहते थे अरे बच्चे देखो आज पुराना शरीर है, तकलीफ है, ये है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, कैसी नई दुनिया होगी, और बाबा के चेहरे पर एकदम खुशी का भाव वो आ जाता था। और ये परिस्थिति जो बाहर की आई ना, खांसी की, तकलीफ की, बस कुछ क्षण रह के चली जाती थी। यही बाबा अब हम बच्चों से एक्सपेक्ट करता है, चाहता है कि हमारी भी स्वस्थिति इतनी मजबूत होती जाए कि हम बाहर की स्थिति को, परिस्थिति को बदल दें, वो हमारे ऊपर आक्रमण न कर सके, हम अपनी स्वस्थिति के द्वारा कोई भी विपरीत परिस्थिति उसको बदल दें। एक ये, और इसके लिए क्या करें, अक्सर करके कई बार हम चाहते भी हैं कि ऐसी हमारी स्थिति हो, मानो कोई परिस्थिति आए, कोई विचार चल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि मुझ में सहन शक्ति आ जाए, मुझ में समाने की शक्ति आ जाए, इन व्यर्थ के विचारों को संभालूं, चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। संकल्प अगर चलते हैं उसका कारण क्या है कि हम उसको ऑर्डर तो करते हैं, हे सहन शक्ति आओ, हे समाने की शक्ति आओ, लेकिन जब तक व्यक्ति अपनी सीट पर सेट नहीं होता है तो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानता। कोई भी ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, या बड़ा कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी है, जब तक अपनी सीट पर है सब उसका ऑर्डर मानेंगे, और जब वो रिटायर हो गया या नहीं रहा या दूसरी जगह चला गया, कोई उसका ऑर्डर मानेगा नहीं। ऐसे ही बाबा कहता है आप भी सोमान की सीट पर पहले स्थित हो, उसके बाद जिस शक्ति को, जिस गुण को ऑर्डर करेंगे वो तुरंत ही आपका ऑर्डर मानेगी और फिर वो परिस्थिति बदल जाएगी, स्वस्थिति हमारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि उस परिस्थिति को हम बदल सकेंगे। ये प्रत्यक्ष बाबा में देखते थे, ये इसी से हम निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमने इस परिस्थिति पर अनेक बार विजय प्राप्त की है, आज भी ये आई है, फिर से विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अनेक बार जो कार्य किया हुआ होता है वो सहज हो जाता है। और क्या देखा बाबा में, बाबा भी देखो जब ऐसी परिस्थिति आती थी ना कोई भी, तो बाबा जैसे कि अपनी स्वस्थिति से जब परिस्थिति को बदलता था, और हमें ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले कोई चीज विचारों में, संकल्प में आती है, और संकल्प के बाद फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वाणी के द्वारा या कर्म के द्वारा। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को पिछले कुछ वर्षों से एक होमवर्क सबको दिया हुआ है। कौन सा होमवर्क? जो मन से कनेक्टेड है, जो बाबा ने कहा है मन जीते जगत जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मतलब सारा दारो मदार हमारे विचारों पर, संकल्प पर है। इसीलिए कहा है हमारी भारतीय संस्कृति में, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसीलिए ही ये भी कहा हुआ है, गीता में भी कहा है मन मना भाव। तो जब तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना, मन को जितना जितना हम जीतते चलेंगे संकल्पों को, उतना क्या होगा, उतना उतना सब चीजों को जीतते जाएंगे। सारा दारो मदार मन पर ही है, इसलिए बाबा ने भी पहला काम क्या किया, 1936-37 में बाबा ने भी ये अनुभव किया कि ये मन जो है बड़ा चंचल है, भाग जाता है, योग लगाने बैठते हैं और बुद्धि भाग जाती है। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने मन को पत्र लिखा। गौर से सुनना किस रीति से पत्र लिखा। हम सब ने भी सुना है बाबा ने जो पुरुषार्थ किया वो दो डायरियों के रूप में यज्ञ में बहुत समय तक रहा। एक डायरी में तो बाबा ने आत्मा का अभ्यास पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है आदि आदि, बाबा की लौकिक पत्नी का, बेटे का, बुद्धि जहाँ जहाँ जा सकती है बाबा ने लिख के पक्का किया। फिर बाबा की स्थिति इतनी आत्मिक हो गई है कि हम लोग जब भी मिलते थे बस बाबा दृष्टि देते थे और थोड़ा ही दृष्टि देते थे, हम सब विदेही हो जाते थे। बाबा से जब मिलते थे बाबा ऐसे ही हाथ फैला दे, आओ बच्चे आओ, और हम सब बस मैग्नेटिक पुल, चुंबकीय आकर्षण की तरह जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, दृष्टि लेते थे, एकदम अशरीर। फिर क्या करते थे, फिर बाबा ऐसे थोड़ा सा थपथपा के और मुंह में टोली देते थे, हालचाल पूछते थे, एक जाता था दूसरा आता था, फिर दूसरे के साथ भी यही होता था। इस तरह हर एक ये जो विदेहीपन की स्थिति, और इसका कारण क्या है मुख्य, कि बाबा की अपनी विदेहीपन की स्थिति इतनी पक्की थी कि जिस भी आत्मा को दृष्टि देते थे वो विदेही हो जाता था, अशरीरी हो जाता था। हमें भी बस यही अभ्यास करना है, जो अब की बार भी बाबा ने कहा है, सुनने सुनाने का समय तो चला गया, इस बार की जो मूर्तियां चली हैं, अभी क्या करना है, अपनी वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तित करना है। लोगों ने बहुत सुना है लेकिन उसका असर अब कम, क्योंकि अभी मनुष्यों की वृत्तियां वो तमो प्रधान होती जा रही हैं। इस कारण से ही संसार में अनेक प्रकार के केसेस सुनने में आते हैं कि वृत्ति जब तमो प्रधान हो जाती है तो उनके कर्म भी अति में चले जाते हैं। तो वृत्ति को वृत्ति से ही बदला जा सकता है। कांटा जैसे होता है ना, तो कांटे को भाई सुई से या कांटे से ही निकालते हैं तब वो निकल सकता है। इससे मनुष्यों की जब वृत्ति ही अति तमो प्रधान हो गई है, वायुमंडल ही बहुत तमो प्रधान हो गया, उसको हम अपनी वृत्ति को सतो प्रधान बना के ही उस वृत्ति को बदल सकते हैं, लोगों की वृत्ति। इसीलिए बाबा अभी हमें इस सूक्ष्म सेवा की ओर ले जा रहा है। तो मैं बता रहा था कि बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा बाबा ने, जब बाबा ने देखा, 1936-37 की बात है, वो पत्र की एक एक कॉपी हम लोगों को मिली थी। बाबा ने तो सिंधी में लिखा था, उसका हिंदी अनुवाद करके बाबा ने मन को एड्रेस किया। हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया कि तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और तू बलशाली हो गया और मैं भी राजा होते हुए भी तेरे वशीभूत हो गया, तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा, और तुमने मुझे बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं और मैं अब पुनः अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूं, हो गया हूं। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मंत्री है, तुझे मेरी बात माननी है। तो बाबा ने ऐसा स्वमान की सीट पर पहले अपने को सेट करा और उसके बाद जैसे मन को ऑर्डर दिया। हम भी अपने से पूछें कि हमें भी बाबा समान स्थिति बनानी है, क्या मैंने भी मन को इस रीति से इतना कंट्रोल किया है। भक्ति मार्ग की तरह यही ना कह दें कि क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम नहीं चाहते लेकिन मन भाग जाता है। अक्सर करके ऐसा भक्ति में भी कह देते हैं, और हम बच्चों का भी अनुभव है कि मन जितना वश में रहना चाहिए उतना नहीं, बीच बीच में योग भी करो, ध्यान करो, मन चला जाता है। लेकिन उसको वश में करने का एक यही है कि मन को हम अपने सुमान की सीट पर बैठ करके फिर मन को ऑर्डर करें। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ भागती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि हे बुद्धि, अब मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, अब मेरी बुद्धि दिव्य होती जा रही है, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे भी मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया। तो निश्चिंत स्थिति में रहने के लिए ये आवश्यक है कि हम पहले स्व सशक्तिकरण, जो हमारा ये अंदर का मन का शक्तिकरण, बुद्धि का शक्तिकरण, संस्कारों का शक्तिकरण करें, इनको शक्तिशाली बनाएं जैसा हम चाहते हैं। संस्कार तो धीरे धीरे हमारे बदलते जाते हैं, शक्तिशाली मन भी काफी बदला है, लेकिन जितने हद तक बदलना चाहिए उतने हद तक मन और बुद्धि अभी हमारे कंट्रोल में पूरी नहीं आई है। इसीलिए बाबा कहते हैं इनको अपने वश में कर। तो इसीलिए मन जीते जगत जीत, तो बाबा ने भी सबसे पहले ये रियलाइज किया, और उसके बाद अंतिम दिन में हमने क्या देखा, जब मन पूरा वशीभूत हो जाता है अपने, तो देखो कितनी वंडरफुल बात है कि 17 जनवरी को 1969 को हम मधुबन में पहुंच गए और 17 और 18 दो दिन बाबा के साथ साथ थे, बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का और पास में जाने का और अनुभव करने का मौका मिला। क्या देखा, पहले जब हम लोग बाबा से मिलते थे 1962-63 वगैरह में, तो कोई बात होती थी बाबा को बताते थे, बाबा सुन के समाधान देते थे। फिर और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया 1966-67 वगैरह में, बाबा के सम्मुख जाते थे और कोई बात होती थी बोलना शुरू ही करते थे, एक दो लाइन ही बोलते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया, बाबा अभी तो हमने बोलना ही शुरू किया है, अभी तो पूरी बात बताई नहीं, नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और फिर बाबा उसका समाधान देता था। लेकिन 17-18 जनवरी 1969 को हमने क्या देखा, क्योंकि उस समय बाहर की पार्टियां ज्यादा नहीं थी, हम लोग थे और एक पार्टी और थी बस कुछ लोग, तो बाबा के साथ मिलने का कई बार मौका मिला, दो दिन में 6-7 बार, और बाबा के सम्मुख जाते थे और कि ये बाबा से पूछेंगे, सेवा की ये बात पूछेंगे, कभी स्वोन्नति की ये बात पूछेंगे बस, और जब ये सब सोच के जाते थे बस बाबा जरा सा दृष्टि देता था, एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस बाबा ने दृष्टि दी, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, बिना एक भी अक्षर बोले। क्यों, क्योंकि बाबा की इतनी जो स्थिति महान हो गई थी, जिसे कहते हैं बाबा ने, हम बच्चों से भी चाहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा यानी संकल्पों की भी ऐसे इच्छाओं की अविद्या हो जाए तो क्या होगा, दूसरे के मन में क्या इच्छा चल रही है, क्या संकल्प चल रहा है, उसको हम सहज पढ़ सकेंगे। जैसे पानी होता है ना, पानी अगर है, साफ पानी है, निर्मल पानी है, हम उसमें अपनी छवि देख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ भी उठा के उसमें आप फेंक दो, पानी में लहरें पैदा होंगी, तो उस समय हम अपना छवि स्पष्ट देख सकेंगे, नहीं देख सकेंगे। ऐसे ही संकल्पों की भी है, मन के अंदर अगर संकल्प रूपी ये लहरें नहीं होंगी, तो हम अपनी भी छवि और दूसरे भी हमारी संकल्पों को सहज रीति से, हम किसी के भी संकल्प को सहज रीति से पढ़ सकते हैं, और अंत समय में तो यही पाठ चलना है, हमें सबके संकल्प, अनेक अनेक आत्माएं आएंगी हमारे पास, और अगर हमारी ऐसी स्थिति होगी बिल्कुल निश्चिंत, उसके अंदर संकल्पों की लहरें नहीं होंगी, तो क्या होगा, दूसरे के संकल्पों को पढ़ करके उनकी इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकेंगे। जैसे इन दो दिनों में देखा, बाबा ने बस एक अक्षर हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, 6-7 बार ऐसा हुआ। दो दिन जाते थे बाबा के सम्मुख, बस बाबा जरा दृष्टि दी, खुद संकल्पों के ऊपर बाबा की पूरी विजय हो गई थी, इसलिए बाबा दृष्टि देते ही, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। तो ये स्थिति बाबा अब हमारी भी चाहता है, अगर हम वास्तव में बिल्कुल बेफिक्र बादशाह निश्चिंत स्थिति को चाहते हैं, तो हम अपने को पहले हमें मन जीते जगत जीत, इच्छा मात्र अविद्या, इस स्थिति को पाना होगा, जिससे अंत समय में क्या होगा, जैसे उस समय हमने ये अनुभव किया, अंत में यही होगा कि जो हमारी भक्त आत्मा है, जो द्वापर युग से हम जिनके इष्ट देव हैं, जो भक्त आत्माएं हैं और जिनके हम इष्ट देव हैं, वो आएंगे हमारी जड़ मूर्तियों से भी, वो इस प्रकार से वाइब्रेशन लेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव करेंगे। और जब हम सतयुग त्रेता में होंगे और जो वो हमारी प्रजा के रूप में जब हम होंगे, हम सभी यहाँ तो होवनहार महाराजा महारानी बैठे हैं, तो जो इतने आएंगे और इस समय भी हमें उन आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करना होगा। बाबा ने बताया ऐसा समय आएगा जब आएंगे आत्माएं, चारों तरफ अति हलचल होगी और अति हलचल चारों तरफ हो और इसमें पास होने का आधार है अति अचल। प्रकृति की हलचल होगी, पुराने संस्कारों की हलचल होगी और संबंधों की हलचल होगी, सब प्रकार की हलचल होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में अचल रहना ये हमारे पास होने का लक्षण है। और उसमें क्या होगा कि जो और हलचल वाली आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी भिन्न भिन्न इच्छा लेकर के, हम तो एक ही होंगे, हमारे सामने 10 आत्माएं आई, मानो कोई साक्षात्कार की इच्छा लेके आया, हनुमान का, कोई गणेश का, कोई नारायण का, लक्ष्मी नारायण का, बस हमारे सम्मुख आते आते साक्षात्कार की चाबी तो बाबा के पास है। लेकिन अगर हमारा तन मन ये पूरा पवित्र होगा तो उस समय बाबा सबको उनकी इच्छा के अनुरूप साक्षात्कार कराएगा और वो आत्माएं भी तृप्त होके जैसे चली जाएगी। तो हमें अपने को उस स्थिति के लिए बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसीलिए बाबा ने कहा है, जो बाबा ने कहा कि दो खजाने समय और संकल्प, ये दो खजाने हैं। बाबा भी एक एक समय को, एक एक सेकंड को भी सफल करता था। कैसे? जब पार्टी आती थी तो बाबा से मिलने के लिए पार्टी टीचर लाती थी ब्राह्मणी, तो बस टाइम मुकर्रर होता था भाई 10 बजे मानो बंबई की पार्टी आएगी, 10:30 बजे दिल्ली की, 11 बजे कलकत्ता की, आदि आदि। तो बाबा या तो झोपड़ी में मिलते थे अपने, या अगर बड़ी पार्टी होती थी तो हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, अगर एक दो ही होते थे कई बार तो कभी कभी अपने कमरे में भी मिल लेते थे, जो बाबा का कमरा है, तब तो बहुत छोटा सा कमरा था, जहां तक बाबा का पलंग पड़ा हुआ है उतना ही कमरा था, ये तो बाद में एक्सटेंड किया। तो बाबा से मिलने टीचर आती थी कमरे में और देखती थी बाबा की आंख खुली हुई है और बस बाबा अपने ही बस मस्ती में मस्त है। जो बाबा कहता है 5 स्थानों का चक्कर बुद्धि से काटो, तो कभी बाबा सूक्ष्म वतन में है या कभी बुद्धि से परम धाम में। ऐसे टीचर सामने आ भी जाती थी, बाबा कोई ध्यान में भी नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, आंखें खुली हुई है और बस टीचर आती थी, बोलती थी बाबा बाबा मैं पार्टी लाई हूँ, बस तब बाबा को एकदम जैसे ध्यान तंद्रा भंग होती थी और अच्छा अच्छा बच्ची आ गए, झटका सा जैसे बाबा को लगता था और उसके हाँ बच्ची ले आओ पार्टी को, पार्टी आती थी बाबा से मिलती थी और बस पार्टी गई। और उसके बाद दूसरी पार्टी के आने का में 5-10 मिनट का मानो टाइम भी है, तो फिर बाबा अपनी स्वसेवा में स्थित हो जाता था, यानी कि एक सेकंड भी बाबा का वेस्ट नहीं होता था। बाबा बस यही अब हम बच्चों से चाहता है कि जो हमारा समय रूपी खजाना है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, एक एक सेकंड जो है एक एक जन्म की प्राप्ति कराने वाला वास्तव में समय ये है। तो ये समय और संकल्प को हम और आगे बढ़ाते जाएं। तो इस रीति से मन के ऊपर और क्या चीज है, बाबा ये भी चाहता है हम साक्षी दृष्टा जैसे होते जाएं। परिस्थितियां तो आएंगी, विपरीत भी आएंगी, संबंधों के भी पेपर आएंगे, शरीर के पेपर बाबा ने बताया है, दो पेपर तो कई बताए हैं बाबा ने कि भाई आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर होगा, पुराने स्वभाव का, संकल्प का, संस्कारों के पेपर होंगे, फिर प्रकृति के पांच तत्वों के पेपर होंगे, अतिरिक्त भटकती हुई आत्माओं के पेपर होंगे आदि आदि। लेकिन दो पेपर जो बाबा ने पिछले कुछ वर्षों में विशेष बताए हैं, एक तो शरीर का पेपर और दूसरा परिवार का पेपर, अपने ब्राह्मण परिवार का। किसी भी आत्मा को, कोई ब्राह्मण परिवार की आत्मा है और उसकी तरफ से या अपने शरीर, हिसाब किताब, कर्म भोग चुकते होंगे, उस समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहती है उस पर ये सारा निर्भर करता है। तो बाबा एक तो ये चाहते हैं शरीर के पेपर, और उसके लिए जो बाबा को ये बताया अभ्यास, एक सेकंड में देह में आने का, एक सेकंड में देह से न्यारा होने का, पार्टी आती थी बीच में, बस ये अभ्यास पक्के से पक्का हो। हमें ये तो अभ्यास पक्का है कि देह में आ जाते हैं, वो तो तुरंत ही योग करा, लाल लाइट से सफेद हुई, उससे पहले ही तैयार होते हैं जैसे आ गए। लेकिन देह से न्यारा होने का अभ्यास भी इतने समय में हो जाए, एक सेकंड में, यही बाबा चाहता है। तो इसलिए शरीर का पेपर अगर हम सफलतापूर्वक हैंडल करना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, व्याधि हो, रोग हो, तकलीफ हो, पेन हो, तो देह से न्यारा होने का और देह में आने का अभ्यास। ये जितना ये हमने बड़ी दादी का देखा, इतनी व्याधि भी होती थी, शरीर का रोग भी होता था, तो भी दादी से डॉक्टर भी पूछता था, हम लोग भी कई बार हुआ जब जाते थे कॉटेज में, तो बस दादी आपको तो इसमें बहुत कष्ट हो रहा होगा, दादी कहती नहीं बिल्कुल ही नहीं, वाकई बिल्कुल नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि दादी को हम देखते थे न्यारा होने का देह से, ये अभ्यास और बहुत पक्का। तो एक ये अभ्यास हमें और पक्का करना है, देह में आने का, देह से न्यारा होने का। तो दूसरा परिवार का पेपर, क्योंकि जितना जितना ब्राह्मण परिवार बढ़ता जाएगा, बहुत प्रकार की आत्माएं आती जाएंगी, कोई आत्माएं पुरानी भी होंगी, लेकिन उनमें कोई ऐसी बात देखेंगे जो मर्यादा के विहीन होगी, तो हमें उसके प्रति संकल्प चलेगा, अरे ये 20 साल पुराना, ये 15 साल पुराने, इनके अंदर भी ये संस्कार, तो उससे क्या होगा, हमारी अवस्था भी विचलित होने की संभावना है। तो इसलिए बाबा ने कहा है परिवार का पेपर, उसको कैसे हैंडल करें। एक तो बाबा ने ये कहा है कि मेरे जो भी बच्चा है, ब्राह्मण बच्चा, एक एक वो मेरा चुना हुआ बच्चा है, आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उन सबसे भी वो महान है, क्यों, भले साधारण रूप में, लेकिन बाबा उसका ये रूप रंग नहीं देख रहे, पोजीशन लौकिक नहीं, बाबा उस आत्मा को देख रहे हैं जो उसको चुना है बाबा ने, जो आत्मा सतयुग के आदि काल से लेकर के आई है, और बाबा उन आत्माओं को चुनकर ही यहाँ पर लाया है। इसीलिए भगवान ने उस आत्मा को चुना है, ये हम न भूल जाए। हम केवल वर्तमान स्वरूप देखते हैं तो कई आत्माओं के लिए संकल्प होता है, इसके अंदर अभी तक भी ये ऐसी बात, ये तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस समय हम ये सोचें, बाबा ने दो बात बताई है विशेष, एक तो हर आत्मा को हम तीनों कालों की दृष्टि से देखें, केवल वर्तमान स्वरूप देखते हैं तो अभी तो उसमें जैसे अप डाउन होने का पार्ट है, लेकिन हम ये ना भूलें कि ये वही आत्मा है जो भगवान की चुनी है, और भगवान ने कहा है क्या कि हर आत्मा जिसको भी मैंने चुना है वो विशेष आत्मा है, इसीलिए उस आत्मा को हम विशेषता की दृष्टि से देखें। हाँ, वर्तमान समय उसमें कुछ कमजोरी है, वो भी समय आएगा, निकल जाएंगी, इसीलिए तीनों कालों की दृष्टि से देखें। और दूसरी ये बात, ये भगवान की चुनी आत्मा और भगवान का सिलेक्शन जो है कभी भी गलत नहीं हो सकता। आज भले वो आत्मा थोड़ा कमजोरी का पार्ट प्ले कर रही है, किसी में अगर ऐसी बात देखते हैं, लेकिन ईश्वर की सिलेक्टेड आत्मा है, और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए इस दृष्टिकोण से लौकिक में भी कोई नाटक होता है, कोई ड्रामा होता है, उसमें क्या होता है, सारे के सारे एक्टर एट ए टाइम पार्ट थोड़ी प्ले करते हैं। कोई फिल्म होती है, कभी हीरो का पार्ट होगा, कभी कॉमेडियन का पार्ट होगा, कभी कोई विलेन का पार्ट होगा, कभी नाचने गाने का, कभी दुख का सीन, कभी खुशी का सीन, तो सबके पार्ट अलग अलग वगैरह होते हैं। ऐसे ही इस नाटक को देख करके हमें सदा खुश रहना है, इसमें कभी भी हम विचलित ना हो, दुखी ना हो, ये देखना। और कब विचलित कब होते हैं हम, हमारी अवस्था कब ऊपर नीचे होती है, जब हम किसी भी चीज का दोष जो है, कोई भी बात हुई उसका दोष दूसरे पर लगा देते, भाई उसकी वजह से मुझे क्रोध आया, उसने ये करा इसलिए मुझे क्रोध आ गया, भाई उसने क्रोध किया और इसलिए मैंने, उसने नुकसान किया इसलिए मैंने ये किया, अपना भी कोई कमजोरी होगी हम दूसरे पर लगा देते हैं। इसके लिए भी बड़ा अच्छा किसी ने वो कहा है ना, इसके लिए कि जो हम यही भूल करते रहते हैं, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे, आईना होता है ना शीशा, धूल अगर चेहरे पर होगी तो आईने में भी वैसी शक्ल दिखेगी। तो प्रॉब्लम हमारी, हमारे साथ होती है हमारी समस्या, लेकिन हम दूसरे पर थोप देते हैं, आईने पर जैसे थोपी, और इस कारण से वो प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है। बाबा ने ना, ब्रह्मा बाबा का यही था, कोई भी बात होती थी, बड़ी से बड़ी बात भी होती थी, बाबा जो है ना ड्रामा को एकदम सामने रख करके, और फिर सावधानी जहां देने की आवश्यकता है वो सावधानी भी दी, लेकिन फिर बिल्कुल निश्चिंत हो जाता था। कई बार बाबा बताते थे ये काम करना है बच्चे, काम नहीं होता था, बाबा फिर भी साक्षी दृष्टा, अजन शायद समय नहीं आया है, अभी ये समय बाकी है, आना बाकी है, अपने समय पर ये कार्य भी हो जाएगा। बस इतनी बड़ी हस्ती, महान, फिर भी बाबा के व्यर्थ संकल्प नहीं। बाबा अभी हम बच्चों से चाहता है हम भी ड्रामा की ढाल पर ऐसे खड़े रहे, बस ये ड्रामा बहुत अच्छे से, अच्छा बाबा ने कहा है कि ये ड्रामा जो है ना बाप को बहुत प्रिय है, बाबा को ये ड्रामा प्रिय है तो हम बच्चों को भी प्रिय है, जो भी हुआ अच्छे से अच्छा हुआ, जो हो रहा है और भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी बहुत अच्छे से अच्छा होगा। ये स्थिति अगर हमारी रहती है तो क्या होता है, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सीन आया ड्रामे का, वो हमें विचलित नहीं कर सकेगा, क्योंकि बाबा ने पहले ही बता दिया ये बहुत अच्छे से अच्छा बात है, और उसके लिए हमें हमारा योग और पावरफुल होता चला जाए। इसीलिए बाबा ने कहा कई बार ज्वालामुखी योग का कहते हैं ना, तो वो क्या है, केवल बाबा से संबंध जोड़ना यही योग नहीं है, लेकिन संबंध निभाना वो वास्तव में योग है। और जितना जितना हमारा संबंध निपता चला जाएगा बाबा से, उतना क्या होगा, उतना योग के द्वारा शक्ति हमें मिलती जाएगी। बस योग हम लाचारी से ना करें, कई बार होता है लाला इसी क्लास का टाइम हो गया हम आए, तो लाचारी से नहीं, योग लव से, प्यार से, स्नेह से, साथ ही साथ, और कोई मजबूरी से योग नहीं, योग का पीरियड है, लेकिन मोहब्बत से योग, जो बाबा ने कहा इतना अंदर से प्रेम स्नेह निकलता रहे वो योग का स्वरूप बन जाए। साथ ही साथ योग में कई बार काफी देर तक योग भी करा लेकिन फिर भी भरपूर स्थिति का अगर अनुभव नहीं करते हैं तो खाली खाली योग नहीं है लेकिन खुशी खुशी योग। जितना भिन्न भिन्न संबंधों के साथ जितना हम भरपूर होके स्नेह के साथ संबंध जोड़ते जाते हैं तो ऐसा योग जितना हम करते जाएंगे वो योग के द्वारा हमें और शक्ति प्राप्त होती चली जाएगी। तो अभी हमें बस इन चीजों को ही यही चीजों ने बाबा की स्थिति को बिल्कुल निश्चिंत बना दिया। बेफिकर बादशाह की स्थिति हो गई, सब कुछ है देख भी रहे हैं लेकिन उस चीज का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और वो कब होगा उसके लिए एक बात बड़ी बाबा में देखी, कौन सी? जो भी महान आत्माएं होके गई उनमें एक गुण विशेष होता है वो है क्षमा का गुण, फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो महान आत्माएं होंगी दूसरे की कमी कमजोरी को दिल में नहीं रखेंगी लेकिन हम लोग क्या है, कोई भी बात हुई न चाहते भी वो अगर हमारे दिल में रह जाती है हम उस आत्मा को क्षमा नहीं कर पाते। और इस कारण से क्या होता है, जब कोई भी आत्मा जिससे हमारे उतने मधुर संबंध नहीं है वो आती है हमें पुरानी घटनाएं याद आ जाती है। बाबा की स्थिति ऐसी थी, जो बाबा कई बार कहता था बाबा के दो प्रकार के बच्चे हैं, लगे हैं, सगे हैं, सब हैं। बाबा किसी को बाहर से प्यार करता है अंदर से किसी को, लेकिन ऊपर से देखने में इतना हरेक को लगता था बाबा जितने मुझे प्यार करता है उतना प्यार बाबा किसी और से नहीं करता। ऐसे ही बाबा भी यही चाहता है हम आत्माओं के द्वारा भी हर एक को ये अनुभूति हो इतनी सारी विश्व की आत्माएं आएंगी कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ही है जहां से हमें स्नेह की प्यार की सच्चे प्यार की प्राप्ति हो रही है। और ऐसा अब लोग अनुभव करते भी जा रहे हैं। तो अभी हमें यही अपनी परफॉर्मेंस को बस देखते चलना है। कोई भी एक्टर होता है ना लौकिक दुनिया में भी, तो उसकी परफॉर्मेंस जज की जाती है न कि उसके पार्ट से। पार्ट क्या है, कोई राजा का पार्ट बजा रहा है उसका और कोई दूसरा भिखारी का पार्ट बजा रहा है तो ऐसा नहीं कि राजा का पार्ट जो है वो बहुत अच्छा है भिखारी का कम है, नहीं। वो पार्ट को कितना एक्यूरेसी से कितना अच्छी तरह पार्ट प्ले कर रहा है चाहे पार्ट साधारण हो, यही अभी हमें देखते चलना है। हर एक का पार्ट एक जैसा तो ड्रामा में हो नहीं सकता, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई अमीर है गरीब है, पुराना है नया है, लेकिन सबके पार्ट को देखते हुए हम ये निश्चिंत रहें हर एक का पार्ट अपना, मैं अपना पार्ट कितना एक्यूरेसी से बजाऊं। यही कुछ बातें थी जो बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है। आइए हम सभी मिल करके ना बाबा की समान उस निश्चिंत स्थिति को भी प्राप्त करे है। और वो तभी होगा जो बाबा ने जो करके दिखाया, शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। और वो निश्चिंत स्थिति जितनी हमारी होती जाएगी उतना उतना हम आत्माएं भी सब फिक्र से फारिग होकर बेफिक्र बादशाह बनते चले जाए। ओम शांति, ओम शांति।